दिन भर 29 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। ब्राजील के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 76 लोगों के मरने की खबर।
दिस सिचुएशन इज रिग्रेटेबल, वी स्टिल हैव टू कंफर्म द नंबर ऑफ विक्टिम्स।
100 वुमेन सीरीज में आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक महिला मैकेनिक शांति देवी से।
और जैसे अगर नया टायर आता है तो उसमें पहले ट्यूब और लंगोटी निकाली जाती है, लंगोटी निकाल फिर उसको साफ करती है, कचरा नहीं रह जाए, फिर उसे पाउडर लगा देती है, पाउडर लगा के ट्यूब लंगोटी अंदर डाल देती है, फिर जो जो लोहे का रिम होता है ना इसी में टायर फंसा देती है, पुराना हटा के नया डाल।
जिक्र होगा मोहाली टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। कोलंबिया के मेडेलिन में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 81 लोग सवार थे। इस हादसे में 5 लोग बच गए। अधिकारियों के मुताबिक बोलीविया से कोलंबिया की उड़ान भरने वाले चार्टर्ड विमान में स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ियों, अधिकारियों और पत्रकारों समेत कुल 72 यात्री और चालक दल के 9 लोग सवार थे। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया है कि विमान में इलेक्ट्रिक समस्या के कारण ये दुर्घटना हुई। कंट्रोल टावर के अनुसार पायलट ने उतरने से पहले खराबी की शिकायत की थी। महाभियोग का सामना कर रही दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुन हे को इस्तीफा देने की पेशकश की गई है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि उन्हें इस्तीफा कब देना है। वो अपनी पुरानी दोस्त का सत्ता में हस्तक्षेप कर हेरफेर करने और बड़ी कंपनियों से पैसा उगाही के आरोपों का सामना कर रही हैं। टीवी पर दिए एक भाषण में उन्होंने संसद से कहा कि वो उनके सत्ता छोड़ने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य का फैसला मैं सांसदों पर छोड़ती हूं, जिसमें उनके कार्यकाल की अवधि का फैसला भी शामिल है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करने के लिए देश से माफी मांगी। पार्क गुन-हे ने कहा,
저는 제 대통령직 임기 단축을 포함한
मैं अपने राष्ट्रपति शासनकाल की अवधि सहित सब कुछ संसद पर छोड़ती हूं। मैं राजनीतिक दलों द्वारा तय उस कार्यक्रम और प्रक्रिया के मुताबिक इस्तीफा दे दूंगी, जिससे अप्रत्याशित सत्ता हस्तांतरण के भ्रम को कम किया जा सके। ये थे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुन-हे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, लेकिन देश के पास कई विकल्प हैं। उनका ये बयान यूरोपियन संसद में तुर्की की यूरोपीय यूनियन की सदस्यता पर बात रोक देने के बाद आया है, जिसे जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद हुई कार्रवाई से जोड़ा गया है। हालांकि एर्दोआन ये नहीं बता पाए कि उनके पास क्या विकल्प है, लेकिन हाल में उन्होंने पूर्वी सुरक्षा ब्लॉक शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल में अंकारा के शामिल होने की संभावना की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी अलेप्पो के से सीरियाई सेना के नियंत्रण से पहले ही विद्रोहियों के कब्जे वाले इस इलाके से 16,000 लोग विस्थापित हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहां मानवीय हालात बेहद गंभीर हैं। विपक्षी के नियंत्रण वाले पड़ोसी इलाकों में तेज हवाई हमले किए गए हैं, वहां कोई अस्पताल नहीं है और खाने की कमी हो रही है। बांग्लादेश पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये पिछले महीने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए श्रृंखलाबद्ध हमलों का मुख्य संदिग्ध है। ये व्यक्ति शहर के पूर्वी हिस्से में एक साइबर कैफे का मालिक है, जहां सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहना है कि ये सुनियोजित ढंग से किए गए हमले हैं, जिससे हिंदू अपना घर छोड़ दें और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। कोलंबिया के शहर मेडेलिन के पास ब्राजील के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों, अधिकारियों और पत्रकारों को लेकर जा रहा एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में चालक दल के 9 सदस्यों समेत 81 लोग मौजूद थे, जिनमें से 5 लोगों के बच जाने की खबरें आई हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
कोलंबिया के मेडेलिन के पास चालक दल के 9 सदस्यों के साथ कुल 81 लोगों को लेकर जा रहा एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में ब्राजील के एक प्रमुख फुटबॉल क्लब चापेकोनसे रियल के खिलाड़ियों के साथ ही फुटबॉल से जुड़े कुछ अधिकारी और कुछ पत्रकार मौजूद थे। यह चार्टर्ड विमान ब्राजील से बोलीविया जा रहा था, जहां कोपा सुड अमेरिकाना यानी दक्षिण अमेरिका कप में चोपेकोनसे रियल को मेडेलिन की टीम एटलेटिको नेसियोनाल के साथ फाइनल मैच खेलना था। पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना में 76 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों की जान बच गई है। रिपोर्टों के मुताबिक विमान के मलबे से 7 लोगों को जीवित निकाला गया था, लेकिन इनमें से 2 की तुरंत मौत हो गई थी। यह दुर्घटना दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके में हुई है, इसलिए बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय अग्निशामन दल के प्रमुख एडिसन गुटियरेज ने पत्रकारों को बताया कि विमान के मलबे तक पहुंचना काफी मशक्कत भरा है। दुर्घटना स्थल तक पहुंचना काफी चुनौती भरा है, क्योंकि अगर आपके पास कोई 4x4 चौपहिया वाहन नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते, इसलिए वहां जाना काफी मुश्किल भरा है। ईश्वर का शुक्रिया कि कई लोगों की जान बची है, अग्निशामन दल के प्रमुख एडिसन गुटियरेज के शब्द। इधर अधिकारियों ने कहा है कि हो सकता है कि विमान चालक ने दुर्घटना के समय विमान के तेल टैंक को हवा में ही खाली कर दिया हो, क्योंकि विमान के पहाड़ियों में टकराने के बाद विमान में आग नहीं लगी है। मेडेलिन के मेयर फेडरिको गुटियरेज का कहना है कि स्थानीय अधिकारी मदद पहुंचाने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं जो कि किया जा सकता है।
ये घटना अफसोसनाक है। हम मेडेलिन से सभी आपातकालीन जरूरतों को साथ लेकर आए हैं, मसलन फायर इंजन, एम्बुलेंस और मेडिकल सामग्री। हम मदद पहुंचाने के लिए वो सभी कुछ करेंगे जो हमारे हाथ में है।
मेडेलिन के मेयर फेडरिको गुटियरेज के शब्द। उधर कोलंबिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी के निदेशक अल्फेड्रो बोकानेग्राने ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि इस मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी। बोलीवियन एविएशन अथॉरिटी के निदेशक ने हमें एक तस्वीर भेजी है जिसमें दिखाई दे रहा है कि यह दुर्घटना इलेक्ट्रिक दिक्कत आने से हुई है। हम इसकी जाँच करेंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाओं में हम दूसरी संभावित वजहों की जांच करने से भी नहीं बच सकते। कोलंबिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी के निदेशक अल्फ्रेडो बोकानेग्राने के शब्द। इधर ब्राजील में इस दुर्घटना के चलते 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। साथ ही स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने एक अभ्यास सत्र से पहले 1 मिनट का मौन रखा। उधर दुर्घटना के बाद इस फाइनल मैच को स्थगित कर दिया गया है।
कोलंबिया में विमान दुर्घटना। इस घटना ने 1958 में म्यूनिक हवाई अड्डे पर हुई उस हवाई दुर्घटना की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 सदस्य मारे गए थे। और अब कुछ खबरें भारत से। भारत प्रशासित कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एक सैनिक ठिकाने पर एक हमले में एक अफसर समेत 3 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक चरमपंथी के भी मारे जाने की खबर है। जम्मू में एक और घटना में बीएसएफ ने 3 घुसपैठियों को सांबा जिले में मारने का दावा किया है। इन घटनाओं के बाद जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है और नगरोटा में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसूर।
जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में सेना के आर्टिलरी कैंप पर यह हमला आज सवेरे 5:30 बजे हुआ। सेना विशेष कमांडोज और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कर्मचारियों और हमलावरों के बीच दिन भर जारी रहने वाली इस मुठभेड़ में सूत्रों के अनुसार मेजर कुणाल समेत 3 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। सेना का कहना है कि 2 से 3 फिदाई कैंप में हैं, जिनमें 1 को मार गिराया गया है। नगरोटा में ये कैंप सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर के निकट है।
अर्ली मॉर्निंग द एनकाउंटर टुक प्लेस एंड द टेररिस्ट हैव एंटर्ड वन ऑफ आवर मिलिट्री एरियाज कैंप्स एंड
कोर के प्रवक्ता मनीष मेहता ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन ने आज सुबह ही नगरोटा में शिक्षा संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की थी। सेना ने मरने वालों की संख्या के बारे में अफवाहें न फैलाने की अपील की है और कहा है कि ऑपरेशन देर रात तक जारी रह सकता है। नगरोटा के निकटतम कस्बा सांबा में बीएसएफ ने बताया कि 3 सशस्त्र घुसपैठियों को एक मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। मुठभेड़ में 2 बीएसएफ जवान घायल हो गए। बीएसएफ के डीआईजी उस वक्त घायल हो गए जब घटना स्थल के पास एक बम फट गया। इस वर्ष जम्मू कश्मीर में यह अपनी नवीयत का 3रा हमला है। 18 सितंबर को चरमपंथियों ने उड़ी के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जहां 19 सैनिक मारे गए। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके चरमपंथी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ दिन बाद ही चरमपंथियों ने बारामूला में एक और सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी मारा गया। सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही तनाव जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते भी टकराव की कगार पर हैं। ऐसे में हालात किस ओर जा रहे हैं? मैंने पूछा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन से।
तो और ये चीज बदकिस्मती से ना हिंदुस्तान में समझ में आती है ना बैन अलाकौमी कम्युनिटी को समझ में आती है, शायद पाकिस्तान वाले भी को कायदे से नहीं समझते कि जितने भी एफर्ट्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात सुधारने के या नॉर्मलाइज करने के आज तक हुए कामयाब इस वजह से नहीं हुए कि कश्मीर का मसला अटका हुआ, कश्मीर का मसला अटकते हुए ये सब चीजें तो होनी ही होनी।
प्रोफेसर शौकत का कहना है कि अगर सीमा विवादित न हो तो वो शांत होती है, लेकिन अस्थायी सीमाओं पर इस तरह की घटनाएं राजनीतिक मुद्दों के साथ जुड़ी होती हैं। कश्मीर में पहले ही अलगाववादी आंदोलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में आम लोग हिंसक घटनाओं से इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं ये स्थिति दोनों देशों के बीच जंग में न बदल जाए।
एक जंग का माहौल पैदा हो रहा है, ऑलरेडी दोनों एक छोटे पैमाने पे एक जंग चल रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है दोनों में अब ज्यादा टेंशन बढ़ रहे हैं, तो इससे को लेके तो डेफिनेटली आगे भी इससे ज्यादा हो सकता है।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी जंग का माहौल या अमन का माहौल है, परेशान या ज्यादती कश्मीरी के साथ ही होती है जो भी हो रही है।
इससे ये लगता है कि जो भी कश्मीर में हो रहा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडो पाक जो रिलेशंस में वो पड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई वैसी सिचुएशन है कि जंग हो सकती है।
इस बीच नगरोटा और सांबा में हुए हमलों के बाद नगरोटा और जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नगरोटा से 30 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान की तरफ जाने वाले सभी रास्तों में अधिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंधों की फिर से समीक्षा की जा रही है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों से अपने बैंक अकाउंट के विवरण जमा करने को कहा है। सांसदों और विधायकों से कहा गया है कि वो ये सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को 1 जनवरी तक सौंप दें। सलमान रावी की रिपोर्ट।
नोटबंदी पर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक और वार करते हुए अपनी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि वो 8 नवंबर के बाद से बैंकों में जमा की गई रकम का ब्यौरा सार्वजनिक करें। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि वो ये ब्यौरा अमित शाह को 1 जनवरी तक सौंप दें। ये ब्यौरा 31 दिसंबर तक बैंक खातों में जमा की गई रकम का होगा, मगर विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा को नाकाफी बताते हुए उनकी आलोचना की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था,
अरे उनके घर में घुसे हैं, उनको बाहर निकालो पहले, ये संसद को बोलने से क्या होने वाला है। वो तो उनका एवरी टाइम कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या TMC हो, जनता दल हो, SP हो, BSP, सब लोग अपना ब्यौरा तो इनकम टैक्स भरते हैं और रिटर्न भी भरते हैं, कंटेस्ट करते वक्त भी डिक्लेरेशन देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है जो उनके साथ में घिरे हुए लोग हैं या साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके चाहते लोग हैं, उनका अगर बाहर निकला तो देश की भलाई होगी।
वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता कपिल सिब्बल का कहना था कि बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से 8 नवंबर से पहले बैंकों में जमा की गई राशि का ब्यौरा मांगते।
ये बताएं हमें कि 8 नवंबर से पहले कितना सांसदों ने पैसा जमा किया था या पार्टी ने पैसा जमा किया था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, ये बताते तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री सच्ची संजीदा हैं इस इशू पे। लेकिन ये 8 नवंबर के बाद तो उनको भी मालूम है कि सब कुछ तो पहले ही हो चुका था।
दूसरी तरफ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी स्वयं देश को बदलने के लिए सरकार में आए और ये सब देश को नैतिक राह पर आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। अब जहां तक आलोचना का सवाल है, देश की जनता जवाब दे रही है कि हम मध्य प्रदेश में जीते, हम आसाम में जीते, त्रिपुरा में हमारे वोटों में 10 गुना इजाफा हुआ, कुछ बिहार में हम सेकेंड हुए बंगाल में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स संशोधन बिल का उद्देश्य काले धन को सफेद करना नहीं बल्कि गरीबों से लूटे गए धन को उनके हित में लगाना है। दूसरी तरफ लोकसभा में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा और इस हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल 2016 पास हो गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं कराए जाने पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रपति से शिकायत करने का भी मन बना रहे हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
नोटबंदी का असर आस्था पर भी दिखाई दे रहा है। नकदी की कमी के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में कर्मकांड के लिए आने वाले लोगों को पुरोहित समाज ने कुछ सुविधा दी है। पुरोहित समाज यजमानों के लिए उधार में पूजा करा रहे हैं। हरिद्वार से राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।
धर्म से जुड़ा कारोबार नकदी पट्टिका है। पूजा सामग्री की खरीद हो या पंडित की दक्षिणा और मंदिर का चढ़ावा, सब जगह नकदी की जरूरत होती है। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद आस्थावान उधार के सहारे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के घाटों पर इन दिनों अलग नजारा दिखता है। श्राद्ध या अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। नकदी की कमी से इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज ने इस व्यवहारिक दिक्कत को समझा और अपने पुराने जजमानों के लिए उधार में पूजा संपन्न कराना शुरू किया। अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित कहते हैं,
उनके पास अगर इस प्रकार की दिक्कत है, खुले नोट भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं चेंजिंग हो पा रही है, तो उनके लिए हम ये करते हैं कि आप दक्षिणा अपनी जो है अपनी जिस प्रकार अपने वंशोपले का नाम अपनी वंशावली में लिखाते हैं, इसी प्रकार अपनी दान देने की इच्छुक दक्षिणा आप लिखा जाइए और जब सुविधा हो जाए, आपके बैंक में आ जाए, आपको जिस प्रकार जो मान्य नोट है वो उपलब्ध हो जाए, वो हमारे को पहुंचा दें।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके कुल पुरोहित हरिद्वार में नहीं है। नकदी का संकट ऐसे लोगों के सामने भी है, लेकिन हरिद्वार के पंडितों ने न सिर्फ उन्हें 2000 के नोट के छुट्टे दिए बल्कि विश्वास जताते हुए बाद में पैसे भेजने की बात भी स्वीकार कर ली। राजस्थान के बीकानेर से हरिद्वार आए सुमित मोदी की बात सुनिए।
जी बिल्कुल, हम नोटबंदी को लेकर के बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम हरिद्वार आए हैं और यहाँ गंगा जी के दर्शन, हमें पूजा अर्चना करनी थी। शुरू में जब हम आए तो काफ़ी परेशानी हमें उठानी पड़ी, क्योंकि हम जहाँ भी गए वहाँ पर या तो 2000 का नोट कोई ले नहीं रहा था, या हम लोगों को जो है हर आदमी खुले पैसों के लिए कह रहा था। शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई, लेकिन हम आभार जताना चाहते हैं अपने हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का, जिन्होंने हमें छोटे पैसे उपलब्ध कराए और जो उनके पैसे हमने देने हैं जो हमारे पास नहीं थे, वो पैसे हम लोग जो है उनको अकाउंट में घेर देंगे।
पूर्वांचल के पंडित शैलेश मोहन ने तो अपने यजमान से चेक ले लिए ताकि उन्हें घर से बाहर नकदी की दिक्कत ना हो।
हमारे यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, नोटबंदी के कारण जिनके पास नई करेंसी न होने के कारण उन्होंने हमारे को दक्षिणा स्वरूप ये चेक के रूप में दक्षिणा प्रदान की है, जिससे हमारे आने वाले यात्री जो भी कुछ है उनको दिक्कत ना हो, हमने भी उनसे चेक के रूप में दक्षिणा स्वीकार की।
अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित कहते हैं कि नकदी की कमी का धार्मिक पर्यटन पर सीधा असर पड़ा है और घूमने के लिए हरिद्वार आने वालों की संख्या 90% तक कम हो गई है। गंगा आरती जैसे आयोजनों पर इसका असर साफ दिखता है।
नकदी की कमी का असर पूजा पर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। मुंबई के हाजी अली दरगाह में आज भारी सुरक्षा के बीच भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के बैनर तले कई महिलाओं ने मजार पर चादर चढ़ाई। ये मामला इसलिए खास है क्योंकि 2012 से हाजी अली में महिलाओं के अंदर जाने पर रोक लगी हुई थी। मुंबई से बीबीसी संवाददाता सुशांत मोहन की रिपोर्ट।
मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के अंदर जाने पर लगी पाबंदी को लेकर चल रहा विवाद उस समय खत्म हो गया जब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के नेतृत्व में महिलाओं का एक बड़ा समूह दरगाह के अंदर प्रवेश कर लौटा। इस मुहिम की अगुवाई कर रही भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक नूरजहां एस नियाज कहती हैं,
जिस तरह से मजार के अंदर औरतों को जाने के लिए रोका गया था, आज ये पूरे 4 साल की जद्दोजहद के बाद आज हम अंदर जा पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात।
साल 2012 से हाजी अली दरगाह में महिलाओं के गर्भगृह के अंदर जाने पर पाबंदी लगी थी और फिर इसी साल 24 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस रोक को हटा लिया गया। बीबीसी से बात करते हुए इस पाबंदी के खिलाफ अदालत जाने वाली समाज सेविका जकिया सोमान कहती हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने, भगवान ने या गॉड ने हमको इक्वल बनाया है,
हमको किसी से कम नहीं बनाया है। तो कोई भी हमारे साथ भेदभाव करता है, अन्याय करता है, तो हम उसको ना सुने, यही एक संदेश है इस बात।
दरगाह को सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने घेर लिया था और पत्रकारों को दरगाह के अंदर जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन दरगाह से निकल कर आई महिलाओं ने बीबीसी को बताया कि यह महिलाओं की बड़ी जीत है।
मेरा नाम शाहजहां नूर मोहम्मद शेख। हाँ, बहुत बड़ी जंग है और जीते, और कितने सालों से लड़ रहे थे, आज वो जंग जीत भी ली हमने। बहुत अच्छा लगा हमको, हम अंदर हमारे को औरतें लोग को जाने की इजाजत हो गई है, बहुत अच्छा लगा। पहले नहीं, पहले जाते थे, फिर उन लोग ने बंद कर डाले, फिर बहुत अच्छा लगा। हम लोग
एक बार जाके हम लोगों ने खुद अपने सर पर चादर लेकर निकले हैं, और वहाँ जाकर जब हमने उनको चादर वो दी तो लोगों ने हमारे सामने ही उसको पेश किया, क्योंकि औरत और आदमी के लिए एक ही फासला रखा है। बहुत अच्छा, किसी के बीच में लड़ाई नहीं है, दोनों आदमी को भी बराबर जाने का दिया जा रहा है, औरतों को भी।
हाजी अली ट्रस्ट ने शुरुआत में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को हटाए जाने का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी महिलाओं के मजार तक जाने की पाबंदी को हटाना ठीक समझा। हालांकि बार बार पूछे जाने पर भी ट्रस्ट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन हाजी अली दरगाह जाने पर मालूम पड़ता है कि यहाँ के दरवाजे अब महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। निधि सिन्हा के साथ सुशांत मोहन, बीबीसी मुंबई।
बीबीसी विशेष 100 वुमेन में इस हफ्ते हम ऐसी महिलाओं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो ऐसे काम या नौकरियां कर रही हैं जिन्हें मर्दों के माफिक ही समझा जाता रहा है, जैसे स्कूटर, कार, बस हो या ट्रक। इनके कल पुर्जे ठीक करने से जुड़े काम को शारीरिक तौर पर मुश्किल माना जाता है, जिस वजह से मैकेनिक अक्सर मर्द ही होते हैं। पर दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर माने जाने वाले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक औरत हैं जो अपने पति के साथ करीब 20 साल से ट्रक के टायर बदलने और रिपेयर का काम कर रही हैं। शांति देवी से मुलाकात की दिव्या आर्य ने।
मैं अपनी कार का टायर बदल लेती हूँ, लेकिन आप तो ट्रक का बदलते हो, बस का बदलते हो, क्या क्या करते हो, अपने कारनामों के बारे में बताओ हमको।
जैसे पुराना टायर आया, ठीक है, उसकी पहले हवा निकाल दो, हवा निकल गई, फिर उसको खोलो, खोल के अगर नवा डालना है तो पुराना चेंज कर दो, नया डालो, ठीक है, फिर उसमें फिट करके हवा छोड़ दो, तैयार हो गया। और जैसे अगर नया टायर आता है तो उसमें पहले ट्यूब और लंगोटी निकाली जाती है, लंगोटी निकाल के फिर उसको साफ करके कचरा नहीं रह जाए, फिर उसे पाउडर लगा देते हैं, पाउडर लगा के ट्यूब लंगोटी अंदर डाल देते हैं, फिर जो लोहे का रिम होता है ना, इसी में टायर फंसा देते हैं, पुराना हटा के नया डाल देते, फिर हवा डाल देते, बस तैयार हो गया।
कितने किलो का होगा
ये? होता है करीब करीब 1 क्विंटल का तो होता है।
1 क्विंटल? 1 क्विंटल यानी कितने किलो हुआ?
100 किलो।
हाँ,
100 किलो।
तो आप अपने बारे में ये बताओ कि फिर क्यों आपने इसको चुना?
जब अपन को कोई काम करना है, जैसे आप लोग को आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया था, तो जब आपको मुश्किल लगा था, थोड़ा मुश्किल लगता है जब बच्ची होती है, और जब अपन जान लेते हैं कि हमको बीए करना है या एमएल करना है, तो करना है तो करना है, क्या उसमें रात भी जगना पड़े या दिन भी जगना पड़े, तो करना है ना।
तो आप जितना पैसा चाय की दुकान से कमा रहे थे, और अब आप जब ये कर रहे हो, तो आप जिस तरह जो माली हालत थी वो आपकी बदली है, बच्चों की शादी हो पाई है, पढ़ा लिखा पाया, क्या हुआ है वो, क्या बदलाव आया है ये काम करने से?
ये काम करने से देखो, 5 लड़कियों की शादी कर, 2 बहुएँ भी घर में आ चुकी, ठीक है, 50 गज जमीन ली, जमीन कितनी महंगी, मकान भी बना, अब जो भी कुछ कर रहे हैं सब उन्हीं के लिए।
तो दिल्ली आने से पहले आप कहाँ थे, वहाँ क्या करते थे?
थे ना एमपी में, ग्वालियर में थे ना, कपड़े की सिलाई करते थे दिन में, जैसे मोहल्ला बस्ती में देते हैं ना, लोग हमारे कपड़े सिलते हैं, ऐसे कपड़े सिलते थे। उसके बाद में नाइट में जो बीड़ी नहीं पीती है ये भाई लोग, नाइट में वो बनाते।
अच्छा, और फिर दिल्ली क्यों आए?
दिल्ली तो ऐसे आए ना, पहले वाले हस्बैंड ख़त्म हो गए, दूसरे।
अच्छा, तो ये यहाँ रहते थे या ये शादी करके यहाँ ले आए?
इनके भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे थे।
अरे वाह, अच्छा, तो कैसे मुलाकात?
मुलाकात ऐसी हो जाती है, एक दूसरे का चान होता है तो मिलाप हो ही जाता है। अब तुम यहाँ बैठी हो, क्या पता तुम्हारा चाहने वाला कहाँ होगा, और क्या पता मिल गया, क्या मिल गया, मिला है
यहाँ पे, लेकिन आपके जैसा काम तो कोई और औरत कर रही है, तो इतने आदमियों के बीच में काम करने में कुछ हिचकिचाहट होती है?
ना, मन साफ होता है ना, तो कुछ ही नहीं होता। जब अपन गलत होते हैं तो दूसरा आदमी खाने के लिए होता है।
बुला रही हूँ,
जैसे शीला दीक्षित वो भी तो औरत थी, उनने भी तो शासन चलाया, वो हम शासन नहीं चलाया, जो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत का फल कभी तो मिलेगा, मिल चुका है, आगे और भी मिलेगा, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा कैसे हो।
मोटर मैकेनिक शांति देवी से बात कर रही थी दिव्या आर्य।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
मोहाली में अच्छे विकेट के बावजूद भारतीय गेंदबाजों के दबदबे के सामने इंग्लैंड की टीम आज तीसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हार गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड 236 रन पर सिमटा और भारत को जीत के लिए केवल 103 रनों का लक्ष्य मिला। इसके साथ ही भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली। आज के खेल पर पूरी रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार को।
भारत ने मोहाली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आज खेल के चौथे ही दिन मेहमान इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 103 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल के नाबाद 67 और विराट कोहली के नाबाद 6 रनों के साथ 20.2 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैसे दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज मुरली विजय बिना कोई रन बनाए क्रिस वॉक्स की उछाल लेती गेंद पर स्लिप पर खड़े जो रूट को कैच दे बैठे। स्कोर बोर्ड पर तब भारत के केवल 7 रन थे। इसके बाद पार्थिव पटेल और चेतेश्वर पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 81 रन जोड़कर पारी को संभाला। पुजारा 25 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर जो रूट के हाथों कैच हुए। पार्थिव पटेल ने इस टेस्ट मैच में अपनी वापसी का जश्न अपने टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक बनाकर मनाया। अपनी 67 रनों की नाबाद पारी में उन्होंने 54 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया। इससे पहले कल के स्कोर 4 विकेट पर 78 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी 236 रनों पर समाप्त हुई। कल 36 रन बनाकर नाबाद रहने वाले जो रूट आज 78 रन की पारी खेलकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच हुए। मिडिल स्टंप पर पिच होकर ऑफ स्टंप की तरफ जाती गेंद पर रूट ने कट किया और विकेट कीपर पटेल के साथ कर स्लिप पर खड़े रहाणे ने अपने बाएं हाथ से शानदार कैच पकड़ा। रूट ने 251 मिनट विकेट पर बिताए और 179 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए। रूट के अलावा आज हासिब हमीद ही भारतीय गेंदबाजों का कुछ जमकर सामना कर सके। वो अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक बनाते हुए 59 रनों पर नाबाद रहे। वैसे क्रिस वॉक्स ने भी 47 गेंदों पर तेज तर्रार 30 रनों की पारी खेली। भारत के आर अश्विन ने 81 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 62 रन देकर 2, मोहम्मद शमी ने 37 रन देकर 2 और जयंत यादव ने भी 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। पहली पारी में 90 रन बनाने के अलावा पूरे मैच में 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। पूरे मैच में आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और जयंत यादव की स्पिन तिकड़ी ने 12 विकेट झटक कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाए रखा। बातों ही बातों में रविंद्र जडेजा स्पिनरों के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों की मानसिकता के बारे में भी बता गए।
टेस्ट क्रिकेट में सिचुएशन के ऊपर रहता है, क्योंकि आप अच्छी सिचुएशन में हो तो ऑब्वियसली सामने वाली टीम स्ट्रगल करेगी। जैसे ही हम इंग्लैंड गए थे तो उनके स्पिनर भी ऐसे ही लग रहे थे कि मुरलीधरन बॉल डाल रहा है, ठीक है, तो टीम के बॉलर भी अच्छे लगते हैं, बैट्समैन भी अच्छे लगते हैं।
इस जीत के साथ ही भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट मैच 8 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा।
मोहाली टेस्ट में भारत की जीत के बारे में बता रहे थे आदेश गुप्त। और सभा के अंत में नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। कोलंबिया के मेडेलिन में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ियों समेत 81 लोग सवार थे। इस हादसे में 5 लोग बच गए। महाभियोग का सामना कर रही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुनहे को इस्तीफा देने की पेशकश की गई है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि उन्हें कब इस्तीफा देना है। उन्होंने कहा कि भविष्य का फैसला मैं सांसदों पर छोड़ती हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, लेकिन देश के पास कई विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी अलेप्पो से सीरियाई सेना के नियंत्रण से पहले ही विद्रोहियों के कब्जे वाले इस इलाके से 16,000 लोग विस्थापित हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा यहां मानवीय हालात बेहद गंभीर हैं। बांग्लादेश पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये पिछले महीने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए श्रृंखलाबद्ध हमलों का मुख्य संदिग्ध है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज सिर्फ इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में मदद की तिलक राज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।